نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں ہم آج انشاء اللہ تعالیٰ جو ٹاپک شروع کریں گے وہ ہے آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی زندگی کے ابتدائی سال کہ جس میں آپ نبوت کے کاموں کے لیے تیار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو چنا, انشاء اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح سے مختلف واقعات کو ہائی لائٹ کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور کیا معاملہ تھا. یہاں تھوڑی سی ایک بات عربوں کے مزاج کی جو بعد میں پھر اسلام کا مزاج بھی بن گیا وہ ذکر کر دوں کہ دن اور تاریخیں یاد رکھنا عربوں کے کلچر میں نہیں تھا. کب اس بات کا اہتمام نہیں کرتے تھے کہ فلاں چیز کب ہوئی, اب اس کو ایک سال ہو گیا, اب اس کو 25 سال ہو گئے, اب اس کی انیورسریز منائی جائیں, اب اس کی سالگرہ کی جائیں, ایسا کوئی مزاج نہیں تھا. اور یہی مزاج اسلام کا بھی ہے. اس کے برعکس کرسچینٹی میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ دنوں اور تاریخوں کو یاد رکھا جائے. ہم دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ سیرت کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنے اہم موقع آئے لیکن آج بھی اس میں کوئی ایک حتمی رائے نہیں ملتی کہ وہ کب ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال, اس کا ہمیں کیوں پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ والا تھا؟ کیونکہ وہ سال عربوں میں ایک خاص واقعے کی طرف سے کی وجہ سے مشہور تھا اور وہ سال تھا جس کو عام الفیل کہتے تھے. ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا کہ ابرہہ کے لشکروں نے حرم پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال 9 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اور وہ 9 ربیع الاول تھا کہ 12 تھا, اس کے بارے میں آج تک لوگ مغالطوں کا شکار ہیں. اور ہمارے ہاں عموماً ایک بات جو کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا یوم وفات اور ولادت سمجھ کے منایا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں تو آپ کی ولادت ہوئی پیر کے دن تھی. لیکن اس سال جب آپ کیلنڈر کو پیچھے لے کے جاتے ہیں تو پیر کا دن جو ہے وہ 12 کو نہیں آتا تھا, 9 ربیع الاول کو آتا تھا. اب آج اگر 12 ربیع الاول کے موقع پہ کچھ لوگ کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان پھر اللہ کے نبی کی وفات کی خوشی منواتا ہے اور ہم لوگ خاموشی سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عام الفیل میں پیدا ہوئے. آپ کی ماں کا نام حضرت آمنہ تھا اور ایک روایت ہے جس میں ابن سعد کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا تھا کہ جس سے ملک شام کے محل روشن ہوئے, ایک یہ روایت ملتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ کسرا جو اس وقت کی سپر پاور تھی, کہتے ہیں کہ ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے کیونکہ وہاں یعنی ان کے ایک مذہبی نشان تھا. اسی طرح مجوسی جو آگ کی ورشپ کرتے ہیں تو ان کی آگ وہ کبھی بجھنے نہیں دیتے کیونکہ ان کے خیال میں آگ کا بجھنا ان کے خدا کا مرنا ہے, تو آگ جلتی ہے تو دوبارہ اس کو جلاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی کی جب ولادت ہوئی تو مجوسیوں کا جو آتش کدہ تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور خشک ہوا اور ان کے گرجے گر گئے. یہ دونوں روایتیں جو ہوئیں اس کے تناظر میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کو کمپائل کرنے میں یعنی اس کو جمع کرنے میں جو صحت کا خیال رکھا گیا, جو اسٹرانگ نریشنز تھی, وہ معیار سیرت کو جمع کرنے میں نہیں رہا. یعنی بعض چیزیں سیرت کے نام پر کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کتابوں میں کہ جس کی اوتھینٹیسٹی کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں پتہ کیونکہ اس سے عمل کی تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اگر ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہے کتابوں میں تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واللہ اعلم ایسا ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال یہ چیز کتابوں میں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. اب آپ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو محسوس کیجئے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہونا, ایسے بچے کو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں. हर एक उसको सोच के रोता ही है, या यतीम कहना या उसके बारे में दुखी होना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने यतीमी की हालत में पैदा किया। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी विलादत पे इतने खुश हुए कि आपको लेके खाना काबा में गए, अल्लाह ताला से दुआ की और आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। मक्का वालों में या अरब में ये नाम ज़्यादा मारूफ नहीं था, और 7वें दिन आपका खतना किया गया। इससे भी आप देखेंगे कि मक्का वाले लोग मुसलमान थे, लेकिन बिगड़े हुए मुसलमान थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए दीन में उन्होंने बुत परस्ती को शामिल कर लिया था, लेकिन रिचुअल्स अमूमन वही थे जो इस्लाम की हालत में होते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी सल्लम की विलादत हुई, आपको सबसे पहले अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया, और उस वक़्त उनका जो बच्चा था वो मसरूख था, जिसके साथ मिलके आपने दूध पिया। इसी सुवैबा ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाया। इसके बारे में एक बात आपसे शेयर कर सकती हूँ। जब नबी सल्लम के वालिद अब्दुल्ला का जब पैगाम बीबी आमना के लिए गया, तो उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अपना भी पैगाम उनकी खालाजद बहन को दिया। उस दौर में ये चीज़ मायूब नहीं समझी जाती थी कि अब तो बच्चों की शादियां होने लग गईं तो अब बाप की ना हो, तो लिहाजा एक ही वक्त में बेटे की भी शादी हुई और उस तरह अब्दुल मुत्तलिब की भी हुई, और इधर अब्दुल्ला के घर में अल्लाह के नबी सल्लम पैदा हुए और अब्दुल मुत्तलिब के घर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, जो नबी सल्लम के चचा भी थे, हम उमर भी थे और हम दूध भी थे, यानी दूध शरीक भी थे। दोनों ने सुहैबा का दूध पिया था। फिर इसी तरह हुआ क्या कि उस दौर में रिवाज ये था कि बच्चों को दूध पिलवाने या उनकी परवरिश के लिए शहरों से दूर देहातों में भेज दिया जाता था। खुली हवा होती, फ्रेश एयर होती, फिर वहाँ अरबी ज़ुबान खुले जो देहातों की बिल्कुल ओरिजिनल ज़बान होती है वो बोली जाती है। आज भी हम देखते हैं ना कि शहरों की शहर जो होते हैं ना, वहाँ जो ज़ुबान बोली जाती है वो अमूमन दूसरी ज़ुबानों से मिल चुकी होती है। मसलन अगर आप उर्दू देखें तो जो बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे तो उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ आपको इंग्लिश के मिलेंगे। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ हैं तो आपकी उर्दू में अब बहुत सारे नॉर्वेजियन लैंग्वेज के लफ्ज़ आ चुके होंगे। इसके बरक्स वो इलाके जो बहुत कम्युनिकेशन से दूर होते हैं, देहातों में नेचुरल लाइफ होती है, तो वहाँ प्योर लैंग्वेज होती है। तो अरब में बिल्कुल जो देहातों में बोली जाती थी ज़ुबान, वो बहुत पसंद की जाती थी। तो लोग ये चाहते थे कि जो बच्चे पैदा हों उनको देहातों में परवरिश पाएँ। मैं जब इस चीज़ को पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि आज के दौर में बिल्कुल कहानी बदल गई। उस दौर में शहरों में पैदा होने वाले बच्चों को देहातों में भेजा जाता था, और आज लोग आला तालीम के लिए बाहर भेजना चाहते हैं कि हम इनको और यानी ज़रा आला तालीम होगी, और फिर वो आला तालीम के जो नतायज निकलते हैं वो कुछ ज़्यादा आला नहीं होते, और उस वक़्त फिर इस फैसले पे अफसोस होने लगता है। लेकिन उस दौर के रिवाज के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लम को कबीला बनू सात की एक औरत हलीमा सादिया जो है उनके सपोर्ट किया गया। इन्होंने फिर अल्लाह के नबी को दूध पिलाया, ये आपकी रज़ाई माँ बनी। इनके शौहर का नाम हारिस था और ये बनी साद से थे। ये हलीमा के अपने भी बच्चे थे, एक अब्दुल्ला था, अनीसा थे। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम जुजामा था और इनका लकब शीमा था। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में एक दफ़ा शीमा आई थी, आपकी दूसरी बहन थी, और आपने इनकी बड़ी कदर की और आपने कहा कि ये मुझे अपनी गोद में खिलाया करती थी। यानी बहुत दिलचस्प कहानी है, जब आप डिटेल से किताब में से ख़ुद भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि कैसे वो किरदार जो मुख्तलिफ नाम हमने सुने हुए हैं तो वो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ किस तरह से जाते थे। लेकिन वो वाक़या बहुत दिलचस्प है जो हज़रत हलीमा सादिया अल्लाह के नबी सल्लम को अडॉप्ट करने का सुनाती हैं। उस दौर में होता क्या था कि मुख्तलिफ औरतें शहरों में कुछ दिन के बाद जाती थीं, और जो नए पैदा हुए बच्चे होते थे थोड़ी बहुत निगोसिएशन करके यानी उजरत लेते थे, औरतें दूध की उजरत लेती थी और बच्चों को ले जाती थी। तो इसी तरह का एक मौका था, हज़रत हलीमा कहती हैं कि वो कहत का साल था, यानी उस वक़्त यानी खुश्क साली थी, और बिल्कुल यानी हमारे घरों के अंदर अनाज नहीं था, बकरियां जो थीं वो दूध देना छोड़ चुकी थीं। कहते हैं एक सफ़ेद खच्चर थी, इतनी दुबली हो चुकी थी कि वो चलने से भी कासर थी। सारी औरतों ने मिलके प्रोग्राम बनाया कि शहर में जाते हैं, कोई किसी अमीर के घर में या लोगों के बच्चे पैदा हुए होंगे उनको लेके आते हैं ताकि कुछ गुजारा हो जाए। कहती हैं कि मेरा अपना जो बच्चा था वो भूख की वजह से सूख गया, कि वो रो सारी रात रो रो के बिलख बिलख के सो जाता, लेकिन दूध का एक कतरा जो था वो मेरे जिस्म में नहीं था, और ना कोई ऊँटनी थी जिससे दूध मिले। और बहुत सारे लोग जब साथ निकले तो कहती हैं कि हमारी सवारी इतनी कमज़ोर थी कि मेरे साथ जो औरतें निकली वो सब दूर चली गई, मेरे से आगे चली गई, और मैं अपने शौहर के साथ पीछे आहिस्ता आहिस्ता अपनी गद्दी पे सवार थी, और मैं दिल में क्या सोच रही थी कि ये सब तो पहले चली गई, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे तो इनको मिल जाएंगे, मेरे क्या नसीब में आएगा। यानी आप देखिए कि अल्लाह ताला कैसे लोगों के नसीब बदलता है। हुआ क्या कि ये पीछे थी, बाकी औरतें गईं। अब जो भी सरदारों के घरों के बच्चे थे और अमीर घरों के बच्चे थे वो हर एक ने ले लिए, किसी ने एक ले लिया, किसी ने दूसरा लिया। कहती हैं कि हर एक के ऊपर इस बच्चे को पेश किया गया जिसका नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उन औरतों ने उसको लेने से इनकार कर दिया क्योंकि बिन बाप का बच्चा था, बूढ़ा दादा क्या दे सकेगा। और चचा भी जो हज़रत अबू तालिब थे, यानी जो अबू तालिब आपके चचा थे, तो वो भी बहुत गरीब थे, इसीलिए उनकी गुर्बत की वजह से बाद में अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को अडॉप्ट किया था, वो उनके कज़न भी थे और अल्लाह के नबी ने अपने चचा की मदद करने के लिए उनको लिया था। तो किस्सा मुख्तसर ये कि गरीब घराना था, कहती हैं किसी ने आपको नहीं लिया, और कहती हैं कि हुआ क्या कि सारी औरतें बच्चे ले के वापस आ रही थी कि मैं उस वक्त मक्का पहुंची और देखा कि उस वक्त किसी घर में कोई बच्चा नहीं बचा हुआ, और सिर्फ वो एक यतीम था कि जिसको देख के हमने सोचा हम इसको क्या ले जाए, हमें क्या मिलेगा, हमारे घर में तो खुद ही फाके हैं। तो मेरे शौहर ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ ना होने से तो बेहतर है, इसी को ले लो। और कहते हैं कि हम लोगों ने बस ऐसे ही सोचा कि चलो कुछ ना होने से बेहतर है, और उस बच्चे को ले के खाली हाथ जाने की बजाय उसको ले लिया। कहती हैं कि उस बच्चे को लेने की देर थी, हमारे दिन बदल गए। जब मैं उस बच्चे को लेके डेरे में आई, कहती मैंने उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया तो जितना उसने चाहा मेरे जिस्म से दूध पिया, और मेरे जिस्म के अंदर ऐसे दूध आ गया कि जैसे नहरें जारी होती हैं। कि उसके बाद कहती हैं कि कई दिन के बाद मेरे अपने बच्चे ने पेट भर के दूध पिया। और कहती हैं कि हमने देखा कि हमारे आंगन में जो बकरी थी उसके थनों में दूध है, और जब हम उस बच्चे को ले के अपनी गधी पे सवार हुए, जाते हुए जो गधी इतनी हल्की और मरियल चाल से चल रही थी वो तेज़ कदम भरने लगी। कहती है थोड़ी देर में हम निकले बाद में थे, लेकिन हम उन तमाम औरतों को पीछे छोड़ के आगे जाने लगे कि और वो कहने लगी ये अबू ज़ुवैब की बेटी को क्या हुआ, ये हलीमा सादिया की कुन्नियत थी, कहने लगी ये इसको क्या हुआ भाई, इसकी सवारी को तो देखो। फिर कहती हैं उसके बाद जो हमने बरकतें देखी, घर में आई वो दरख्त जो कई सालों से सूखा पड़ा था, कई दिनों से, कहती हैं उसके ऊपर पत्ते आ गए, कि हत्ता के लोगों को इस तरह मशहूर हो गया कि लोग एक दूसरे को ये मिसाल देने लगे कि तुम अपनी बकरियों को वहाँ जाके चराओ जहाँ हलीमा अपनी बकरियों को लेके जाती है। सब घरों में खुशखुशहाली थी, और कहती हैं कि हमारे घर के अंदर हर दिन बरकतें आने लगी, और दूसरे लोग भी अपने बकरियों को वहीं लेके जाते जहाँ मैं ले जाती। मेरी बकरी आती तो उनके पेट भरे होते, लेकिन दूसरों की बकरियाँ आती तो वो बिल्कुल खाली होती। अब देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ना अब इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी आया है, ना कुरान पाक की को आयत है, और इतनी बरकतें एक घराने में आई। तो आज अगर उसी नबी की लाई हुई तालीमात को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएं और अगर हमारा उससे ताल्लुक़ जुड़े तो उम्मत को कितनी बरकतें मिल सकती हैं। हमने अल्लाह के नबी की कदर नहीं की, हमने वो शान और वो काम उनका देखा ही नहीं कि जो उम्मत को भी ऊपर ला सकता था। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ात अल्लाह ताला ने शुरू से बाबरकत बनाई। कहती हैं कि ये बच्चा इतनी तेज़ी बढ़ने लगा कि जैसे आम बच्चे बढ़ते हैं उससे ये बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, कि 2 साल की उम्र में होते ही कहती हैं कि आपका जिस्म बहुत चौड़ा चिकला हो गया और आप मेरे अपने बच्चे से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। और 2 साल की मुद्दत जब होती थी तो उसके बाद बच्चे को वापस भेजना होता था। कहती है मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इस बच्चे को भेजूं, क्योंकि जब से ये बच्चा आया था मेरे घर की रौनक बदल गई, लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चा किसी और का था। कहती हैं कि मैं उनको ले के गई, इनकी माँ से मिलवाया, तो मैंने उनसे फरमाइश की कि कुछ देर और इस बच्चे को रहने दें, कुछ देर और सहरा में रह ले, खुली जगह में रहेगा। तो कहती हैं कि मक्का में कुछ वबा का भी ख़तरा था, तो मेरी इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ ने मेरी बात मान ली और इस तरह बच्चा वापस मेरे पास आ गया। अल्लाह का नबी तो इतना प्यारा वजूद था कि कोई एक दफ़ा उनको अपने घर में ले आता था तो छोड़ना ही नहीं चाहता था। आज उम्मत ने अपना ताल्लुक तोड़ लिया है, इसीलिए परेशान है, इसीलिए आज बरकतों से महरूम है। फिर कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम मेरे घर में ही पलने लगे, बड़े हुए। इसी दौरान क्या हुआ कि एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से ये घबरा गई। हज़रत अनस रसी अल्लाह ताला अन्हो सही मुस्लिम की रिवायत से ये वाक़या हमें बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। आप दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, जैसे बाहर बच्चे खेलते हैं ना, तो आप भी खेल रहे थे। कहते हैं कि जिब्राईल ने मुझे पकड़ा और लिटाया और मेरा सीना शक किया, यानी शक के सदर कहते हैं इसको, सीना शक हुआ। फिर कहते हैं कि जमजम था उसको मेरे दिल में डाला, मेरे दिल को धोया और दिल के अंदर जो शैतान का हिस्सा है वो निकाल दिया, फिर दोबारा मेरे सीने को बंद किया और लौटा दिया। अब ये शक के सदर फरिश्तों के ज़रिए से हो रहा था, लेकिन जो दूसरे बच्चे साथ खेल रहे थे उन्होंने घर जाके शोर मचाया, कुतिला मोहम्मद, कुतिला मोहम्मद, के मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। ये पहली दफ़ा आपका, दो दफ़ा आपका शक के सदर हुआ है, एक बचपन में और एक मेराज पे जब ले जाया जाएगा उस वक़्त। हलीमा सादिया कहती हैं कि इस बात से मेरा दिल डर गया, मैं बचपन से इस बच्चे की वो करामतें और इसकी वो बरकतें देख रही थी कि मुझे लगता था कि ये कोई ख़ास बच्चा है, ये आम नहीं है, लेकिन इस वाक़े ने कहती मुझे डरा दिया। और इस तरह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 साल की उम्र जब हुई, यानी कुछ ऐसा वक्त था कि जब बच्चे भाग दौड़ की उम्र के होते हैं, तो कहती हैं कि फिर मैंने आपको वापस आपकी माँ के पास भेज दिया कि मुझे इस बच्चे की जान का ख़तरा है। और आप देखिए कि बचपन में आपको रखा और आपके सीने पे ये निशान दिखता था शक के सदर का, खोला गया आपका सीना। फिर उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम अपनी माँ के पास रहे, तकरीबन 6 साल की उम्र तक आप अपनी माँ के साथ रहे। इतने में इनकी माँ जो थी ये मदीना से ताल्लुक़ रखती थी, तो अपने ननिहाल वालों को, यानी हज़रत नबी सल्लम के ननिहाल वाले या इनके अपना जो मैका था, उनको मिलने के लिए एक मौके पर गईं। इनके साथ इनकी एक लौंडी भी थी, वहाँ से जब वापस आ रही थी तो बीमार हुई, और अबवा का मुकाम जो मदीना मुनव्वरा और मक्का के बीच में आता है, वहाँ जब पहुँची तो आपका इंतकाल हो गया। और इस तरह अल्लाह के नबी जो पहले ही बाप की मोहब्बत से महरूम थे, अब माँ की मोहब्बत से भी महरूम हुए। साथ देखिए कि किसी इंसान के लिए अगर कोई तकलीफ़दह चीज़ों को देखा जाए तो यही होता है कि बाप बाप का इंतकाल हो या बचपन में माँ भी चली जाए। 6 साल का बच्चा क्या होता है, होश भी नहीं होती, समझ भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह के नबी को ये दो गम दे दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि क़यामत तक के आने वाले इंसानों को ये बता दिया जाए कि जिसको अल्लाह ने खैर देनी होती है ना, वो अल्लाह माँ बाप के बग़ैर भी दे देता है। आज अगर बचपन में किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो अब अमूमन ख़वातीन नासमझी से ये जुमले बोलती हैं, हाय इन बच्चों को कौन पालेगा, इनका क्या बनेगा, इनका मुस्तकबिल कैसे बनेगा। हालांकि हकीकत यह है कि सारी दुनिया के बाप मिल भी जाएं तो किसी बच्चे को खैर नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, पालने वाला वो है। बाज़ दफ़ा बच्चे माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद ज़्यादा खैर पाने वाले हो जाते हैं, और जो बच्चे माँ बाप के सामने होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, या उनके पास ये नेमतें नहीं होती। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हर वो दर्द दिया जो बाद में किसी इंसान को मिलता है। आप पढ़ेंगे आगे, यानी यही गम होता है ना, बच्चे ना हो, आपका कोई 3 4 आपके बेटे हुए और उनका इंतकाल हो गया, आपकी 4 में से 3 बेटियों का इंतकाल आपकी अपनी ज़िंदगी में हुआ, आपकी प्यारी बीवी का इंतकाल हुआ, आपके बाप नहीं थे, माँ का इंतकाल हुआ, आप अपने दादा के पास आ गए। अब्दुल मुत्तलिब बहुत मोहब्बत करते थे, कहते हैं कि बाकी बच्चों से ज़्यादा इनको आप नबी सल्लम से मोहब्बत थी कि हत्ता के हरम में जब वो अपनी मजलिस लगा के बैठते तो किसी बच्चे को इजाज़त नहीं होती थी वहाँ आने की, लेकिन अल्लाह के नबी जब आते तो लोग उनको पकड़ना चाहते तो वो कहते नहीं, इसको मना ना करो, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, और अल्लाह के नबी उनके घुटने पे बैठ जाते थे। जिन्होंने बड़े होके कुछ काम करने होते हैं ना, बचपन से अल्लाह ताला उसकी कुछ ना कुछ निशानियाँ दिखा देता है, और अल्लाह के नबी की ये निशानियाँ दिख रही थी। लेकिन दादा का साथ भी ज़्यादा देर ना रहा, सर तकरीबन 2 साल, तकरीबन 8 साल की उम्र थी, कुछ महीने उस पर ऊपर थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल भी हुआ। एक गम पे दूसरा गम, दूसरे पे तीसरा गम, और इस तरह एक बच्चा जो यतीमी की हालत में पैदा हुआ अब अपने चचा अबू तालिब के घर चला गया, कि जिन्होंने फिर आपकी किफ़ालत की। अब्दुल मुत्तलिब ने ये वसीयत की थी कि मेरे बाद अबू तालिब जो हैं वो अल्लाह के नबी को पालें, और चचा ने वाकई चचा होने का हक अदा कर दिया, मोहब्बत से पाला और इतना प्यार दिया कि बाद में आप देखेंगे कि मुसलमान नहीं हुए लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत करते थे कि ख़ुद उनके बिस्तर पे रात को सो जाते थे कि रात के अंधेरों में अगर कोई आपको मारने के इरादे से आए तो तुम आपकी जगह मुझे मार दे। अल्लाह अकबर। वो चचा जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालते थे। फिर इसी दौरान आपके बचपन में बहुत सारे वाक्यात हुए कि जिससे लोग महसूस करते थे कि ये बच्चा कोई आम है, आम बच्चा नहीं। बस एक दफ़ा कहते हैं कि कहत आया, आपके बचपन ही के दौर की ये बातें हैं, तो कुरैश ने कहा कि बहुत ज़्यादा कहत है, खुले मैदान में जाके दुआ करते हैं, बारिश हो जाएगी। कहते हैं कि अबू तालिब जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जब बाहर आए, तो लोगों ने अल्लाह के नबी के चेहरे पे कैसी चमक देखी और महसूस किया कि ऐसे लगता था कि इस बच्चे के चेहरे से बादल की जैसे बूंदें निकल रही हैं और खामोशी हो रही है। और वहाँ कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो थोड़ी देर में पूरे शहर के अंदर जलथल होने लगी, बारिश बरसी, और इतनी बारिश हुई थी कि वाकई जिसके वजह से फिर बाद में उनका कहत ख़त्म हुआ। और जो अबू तालिब थे वो इस बात को एक शेर में बयान करते हैं जिसका तर्जमा क्या है, कहते हैं वो खूबसूरत हैं, इनके चेहरे से बारिश का फिजान तलब किया जाता है, यतीमों के मावा और बेवाओं के मुहाफिज हैं। यानी इस एक वाक्य से भी थोड़ी सी एक आपके अनयूजल बचपन की कहानी मिलती है। फिर इसी तरह एक वाक्य जो आपकी 12 साल की उम्र में हुआ, बुहैरा राहिब का वाक्य, शायद आप लोगों ने तफसीर में पहले या सीरत की किताबों में सुना हो। अबू तालिब ताजिर थे और तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम जाते थे, वहाँ से सामान ला के इधर और उधर इस तरह बेचते थे। उस दौर में एक मौके पे ये अल्लाह के नबी को भी साथ ले गए, क्योंकि अब आपकी उम्र तकरीबन 12 साल हो रही थी। कहते हैं कि जब आप वहाँ निकले और बसरा पहुँचे, यानी जो एक रास्ते में शहर आता था, तो उस वक्त कहते हैं कि रास्ते में एक राहिब रहता था, वो हीरा के लकब से उसको पहचाना जाता था। जब वहाँ काफ़िले ने पड़ाव डाला तो बहीरा राहिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। बहुत तवील वाक़या है, लेकिन उसने जब अल्लाह के नबी को देखा तो देख के पहचान गया। राहिब था ना, यानी क्रिश्चियन था, और उसको पता था कि आखिरी दौर आ चुका है और वो नबी आने वाले हैं कि जिसकी नबूवत की निशानियाँ तौरात और इंजील में दी गई थी। तो उस वक्त फिर उसने अबू तालिब को ये मशवरा दिया था कि इस बच्चे को वहाँ ना लेके जाओ, क्योंकि वहाँ यहूद रहते थे मुल्क शाम में। कहा कि इस बच्चे की जान को खतरा है। कहते हैं कि मैंने देखा कि जब तुम इस घाटी में सवार हुए दाखिल हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं जो सजदे के लिए झुक ना गया हो। ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैंने मोहरे नबूवत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में पाते हैं। और इसके बाद फिर बुहैरा राहिब ने कहा कि अल्लाह के नबी को वापस ले जाओ, मुझे इससे ख़तरा है। तो इस पे फिर अबू तालिब ने अल्लाह के नबी को अपने ग़ुलाम के ज़रिए वापस मक्का भेज दिया और ख़ुद मुल्क शाम चले गए। फिर इसी तरह एक जंगे फुजार नाम की जंग आई थी कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को मदद की और तीर दिए। ये सारे वाक़यात हमें बताते क्या हैं कि अल्लाह के नबी इंसान थे। इन वाक़यात को आप भी इस नज़र से भी सुने कि अल्लाह के नबी को अगर आज के दौर में कोई और हकीक हैसियत से पेश किया जाता है, और आपके बचपन को एक बिल्कुल मिस्टीरियस सा बचपन और जवानी को एक अजीबोगरीब जवानी पेश किया जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत फहमो फरासत दिया, बहुत समझ दी हुई थी कि आप बचपन में ही एक आला मुकाम रखते थे। एक खल्फुल फजूल के नाम पर एक माहदा हुआ था, बहुत सारे फजल नाम के लोग उसमें जमा हुए थे कि जिसमें अमन का माहदा था। मुख्तलिफ कबाइल के लोग जमा हुए और उन्होंने कहा था कि हम लड़ 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 के थक चुके हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम मज़ीद लड़ाई करें, तो चलें सब मिल के अमन का माहदा कर लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें भी शामिल हुए। इससे मुफस्सरीन ने और मौरखीन जो है वो अमल की बात निकालते हैं कि मुसलमान को अगर सोशल बेनिफिट के लिए नॉन मुस्लिम्स के साथ भी अगर कोई माहदे करने पड़े तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। कि बाज़ दफ़ा लोग इस बातों में बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार करते हैं कि इस्लाम और कुफर और ऐसी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छे रंग में भी लिया जा सकता है और जो बुरी है वो बुरी भी हो। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी जवान होते जा रहे हैं और अब आपकी शोहरत बाहर फैल रही है, कारोबार में, तिजारत में। इतने में एक आपकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या आया कि जिसने फिर आपके लिए आगे रास्ते बदल दिए। और वो क्या कि आप बजाते खुद तो गरीब थे लेकिन मेहनती और ईमानदार बहुत थे। अब तिजारत में दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आपकी मैन पावर होती है और दूसरा आपके पास माल होता है। अल्लाह के नबी के पास माल नहीं था लेकिन स्किल्स थी काम करने की। इसी तरह उस शहर में एक खातून थी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो बेवा हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे, शौहर का जब इंतकाल हुआ, कारोबार करती थी, अब उनके पास माल बहुत था लेकिन तिजारत करने के लिए मर्द कोई नहीं था। अपने गुलाम को तिजारत के लिए भेजा करती थी, लेकिन जाहिर बात है कि उसमें वो काम वैसे नहीं हो सकता था। उन्होंने अल्लाह के नबी की शोहरत सुनी तो आपको पेशकश की कि पैसा मेरा ले जाएं, काम आप करें, जो नफ़ा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। और आपके साथ अपने गुलाम मैसरा को भी भेज दिया मावनत के लिए। बस वो सफ़र अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही संगे मील साबित हुआ। सफ़र के दौरान मैसरा ने जो आपका अमल देखा, जो आपका अखलाक देखा, और प्लस आप उस सफ़र में हज़रत खदीजा को दोहरा नफ़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने यहाँ से माल ख़रीदा और वहाँ बेचा, और वहाँ से ख़रीद के लाए तो इधर बेचा। ये तिजारत का एक खूबसूरत असूल बन गया, और नतीजा क्या निकला कि हज़रत खदीजा को बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। जब आप वापस आए तो उस वक़्त तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में आपकी मोहब्बत आ चुकी थी, और आपने अपनी एक सहेली नफीसा के ज़रिए अल्लाह के नबी को पैगाम निकाह दिया। इस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। खूबसूरत थी, दौलतमंद थी, बहुत समझबूझ वाली और मुअज़्ज़ज़ खातून थी, और अल्लाह के नबी से सल्लम के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अच्छा किरदार था, दुनियावी कोई मालो मता नहीं थी। लेकिन जब वो रिश्ता पेश किया गया तो अल्लाह के नबी ने उसको कबूल किया। आज वो लोग जो अल्लाह के नबी के किरदार पे आवाज़ें लगाते हैं, उनको सिर्फ ये बता दिया जाए ना कि सबसे ज़्यादा किसी के जज्बात अगर तेज़ होते हैं तो वो जवानी के दौर में होते हैं। 25 साल का जवान एक बेहतरीन उम्र होती है जिसमें इंसान अपने आप को किसी भी गलत चीज़ में ले जाए या कोई भी हद पार करने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी को देखिए कि 25 साल की उम्र में 40 साल की एक औरत के साथ निकाह किया और उनकी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया। 25 साल जिंदा रही आपके साथ निकाह में, और इब्राहिम नाम के बेटे के अलावा बाकी सारी औलाद हज़रत फात खदीजा से हुई। यहाँ फिर मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ और सोचती हूँ कि आज के दौर में लोग कहते हैं 40s में औरत चली गई, अब बच्चे नहीं पैदा होंगे। ज़रा 30s में आप लेट 30s में चले जाएं तो डॉक्टर्स भी कहती हैं जी अब आप बच्चा पैदा ना करें, अब ये होगा। इस तरह की कहानियाँ लोग शेयर करते रहते हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये कितना बड़ा झूठ है। हज़रत खदीजा की शादी कब हुई थी? आपके साथ जब 40 में थी, और उसके बाद कितने बच्चे हुए? ये बात सोच लेना, एक मेयार बना लेना, ये चीज़ दुरुस्त नहीं। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बच्चे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए, उनमें आपकी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा थी, रुकैया थी, उम्मे कुलसूम और फातिमा थी। और बेटे जो पैदा हुए उनमें एक बेटे का नाम कासिम था। इन्हीं की कुनियत पे अल्लाह के नबी को अबुल कासिम कहा जाता था। और इसी तरह दूसरे बेटे अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला का लकब तैयब और ताहिर दोनों थे। इससे बाज़ लोगों को ये मुगालता लगा कि आपके दो अलग बच्चे थे, लेकिन ये एक ही बच्चा था। इत्तफाक देखिए और अल्लाह की हिकमतें देखिए कि आपके सब बच्चे बेटे जो थे वो बचपन में इंतकाल कर गए, छोटी छोटी उम्रों में, 1 साल का कोई बिल्कुल पैदा होते ही, और बेटियां जो थी वो बड़ी हुई लेकिन वो भी आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गई। सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वफ़ात के वक्त ज़िंदा थी, लेकिन ठीक 6 महीने के बाद उनका भी इंतकाल हुआ। अभी तक कितने गम जमा हो गए अल्लाह के नबी के साथ। यतीम पैदा हुए, 2 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए, फिर गरीब चचा के घर में पले, फिर अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ शादी हुई जिसके पहले से 4 बच्चे हैं, 2 दफ़ा शादीशुदा थी वो पहले से। यहाँ भी ये पता चलता है कि हमारे यहाँ औरत के दूसरे निकाह को कितना बुरा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो बुरा नहीं होता अगर उसके अंदर कोई इंसान को ऐसी चीज़ नज़र आती है, और अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नापसंद नहीं किया। खुलासा क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सारे गम दिए जिन गमों के अंदर कोई एक इंसान दुनिया के काम करना छोड़ देता है, उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ छिन जाती हैं। आज अमूमन हम गम मनाते रहते हैं ना, या खुशी मनाते हैं या गम मनाते हैं, और काम नहीं करते। लेकिन अल्लाह के नबी को ये सारे गम मिले, इसके बावजूद भी आपने ये सब कुछ किया, हत्ता कि फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई और फिर आपके पास नबूवत आई। इससे पहले आपने मक्का में अपना मुकाम बना लिया था, लोग आपको सादक और अमीन के नाम से पुकारते थे। इस्लाम से पहले ही आपको बुतों से नफ़रत थी, आपने कभी गैर अल्लाह का ज़बीहा नहीं खाया, शराब को हाथ नहीं लगाया। वो तमाम बुराइयां जो जवानी में किसी मर्द के साथ हो सकती हैं वो आपके अंदर नहीं थी। आपने कभी राग और गाने नहीं सुने। इसमें वाकया आता है कि एक मौके पे आपने सोचा कहीं शादी होने वाले थी, जाके मैं भी देखता हूँ क्या करते हैं, और वो रातों को महफिलें सजाते थे। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने इस तरह बचा लिया कि आपकी आंख लग गई, और जब आपकी आंख खुली तो सुबह होने वाली थी और वो महफिल ख़त्म हो चुकी थी। 3 दफ़ा ऐसा हुआ मुख्तलिफ मौके पे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाया। इसको इस्मत अंबिया कहते हैं। अल्लाह ताला जिनको नेकियों के लिए चुनता है ना, उनको बेकार चीज़ों में उनका वक्त नहीं लगवाता। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में देखेंगे कि अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली तो फिर आपके साथ क्या मामला हुआ। बड़ी मोहब्बत और प्यार से एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ के उसमें से अपने लिए अमल लेने वाला और आपको एक बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पे समझने वाला बना दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।